Bombay Stock Exchange outperformed. The mid-cap index climbed almost 1.3%, while the small-cap index added over 1.2%.
Sensex में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दिखाई दी. बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर लगभग 2.4%, पावर ग्रिड का शेयर 2.2% से अधिक और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का शेयर लगभग 2% तक बढ़ा. गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में एचसीएल टेक का शेयर 1.1% से अधिक, कोटक बैंक का शेयर लगभग 0.3% और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 0.2% तक गिरा.
Well, look at the sectoral indices. Across sectoral indices at the BSE, all 22 sectors registered gains. Among the top gainers, realty rose almost 1.7%, capital goods added over 1.6%, and telecommunication climbed over 1.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,729 companies advanced, 1,444 declined, and 158 remained unchanged.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में आज रुपया 96 पैसे मजबूत होकर 89.29 रुपए पर बंद हुआ. दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 98.68 पर कारोबार कर रहा था. प्रकाश जी, आज के शेयर बाजार का हाल देखें कि कई दिनों से जो गिरावट का दौर था वो आज रुक गया. आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने आज बाजार को ऊपर जाने में मदद की?
देखिए जी, इसको अंग्रेजी जबान में बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग
जी,
कि बाजार जो था ओवर सोल्ड हो चुका था, लगातार इसमें गिरावट आ रही थी. इस हफ्ते भी जो है खाली आज ही बाजार में तेजी आई
जी.
अच्छी बात यह है कि बड़ी कन्विक्शन के साथ तेजी आई. बीच में जैसे आपने अपने रीड आउट में जिक्र किया कि दिन में किसी भी टाइम में कोई ऐसा बाजार नीचे लुढ़कता हुआ नजर नहीं आया, कन्विक्शन नजर आई. और शॉर्ट कवरिंग काफी दिखाई देती है. शॉर्ट कवरिंग का माने सिंपल जबान में ये होता है कि शॉर्ट एडवांस में लोग जब बेचते रहते उसको फिर जब कवर भी करना पड़ता कहीं फंस ना जाए, ट्रेडिंग का ही एक एलिमेंट है. तो टेक्निकल स्तर पे बाजार जो है आप काफी अच्छा लगा. लेकिन बाजार की और बाजार की आज अच्छी बात यह है जैसे आपने दोनों मित्रों ने बताया कि ब्रेड्थ बड़ी अच्छी रही है, विड्थ अच्छी रही है. बढ़ने वाले शेयर्स काफी ज्यादा हैं कम बनस्पत कम होने वालों से.
हाँ जी,
और सब सेक्टर्स में हरे निशान के साथ बंद हुए हैं. तो कन्विक्शन नजर है, उसका इम्पैक्ट जो है रुपए पे भी पड़ा है आज. तो रुपया जो चिंता का विषय बना हुआ था आज उसमें रुकावट
काफी समय के बाद 90 के नीचे आया.
90 के ऊपर जाके काफी धड़कन बढ़ा रखी थी रुपए ने
जी.
तो वो क्योंकि एफआईआई फिर एक दो दिन से कुछ संकेत मिल रहे हैं कि एफआईआई भी थोड़ा सा खरीद रहा है, पॉइंटर्स मिल रहे हैं. तो फिर आरबीआई भी सतर्क हो गया है रुपए के सुधार में. थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स ऐसी सजेस्ट करती हैं कि शायद आरबीआई की भी इंटरवेंशन दिख रही है. कोई पुष्टि तो नहीं, ऐसे संकेत आते हैं. तो ये सारी चीजें जो है आज बाजार को संभाला. उम्मीद करते हैं कि ये दौर बना रहे.
You attribute, you use the word conviction, which means that the market is now convinced that it's stable. But what would you attribute this? When the Sensex falls, we say why. Let me say when the Sensex rises again, why? Are there domestic factors, the fact that we are a consumer-based economy? Are there global factors, the fact that things are softening at some point? It's a multipolar world, it seems. Sometimes the relationship between two countries goes for a toss and then the softening happens. So how do you view in the context of the global and domestic economy, the rise?
Well, you are right. You know, the analyst would always find an excuse to sometime you can always say, well, the stock market today rose because of good monsoon. The next day it fell, then you ask me, why did it fall? Well, too much rains. So these kind of things happen. But to give you a answer to your questions, what is happening today.
Mm-hmm.
As I said earlier, it's a technical kind of a relief rally. What it means is, because a lot of trading takes place in the marketplace.
Mm-hmm. Mm-hmm.
There's a two things. Trading is that you buy, sell, you take bets, you take shots, you take calls. So, a lot of traders are there. And this trading provides momentum to the market. Momentum in terms of volume, in terms of vibrancy to the market.
Activity.
You know, everybody feels charged about it.
Uh-huh.
And obviously when things are looking up, the sentiment improves.
Right.
Overall, everything is gung-ho.
Uh-huh.
But then, after a few sessions of problems, today we had a good session. It looked like a conviction. I'm not saying, mm-hmm. I'm still not sticking my neck out and saying, oh, conviction is there all over.
Mm-hmm.
Next week, we have to keep our fingers crossed.
So, next week, what kind of outlook do you see?
Next week, it's a little small week, because Christmas ki chutti hogi. Overall, bhi volume bhi kam hota hai. Global markets bhi thodi chutti ke mahol mein hote hain. To volume bhi kam ho jata overall bhi. तो फिर लोग जो ट्रेड मैंने जिक्र किया कि ट्रेडिंग बड़ी एक्टिव होती है मार्केट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड तो लोग बड़ी बड़ी बेट्स भी नहीं लेते पीपल डोंट वांट टू स्पॉइल देयर मूड हॉलिडे मूड होता है तो पीपल वांट टू फील गुड फील रिच सो टू स्पीक सो उस सूरत में ये उम्मीद की जा रही है कि भाई ये हमारी जो मार्केट का आई टेल यू बड़ा आसान सा तरीका है निफ्टी में 800 से लेके 26,100 यही रेंज है
जी
इतने रेंज में अब कोई आप कहे जी वोलेटिलिटी है ठीक है लेकिन इसी रेंज में ही स्टेबल है तो टू दैट एक्सटेंट यू कैन ऑलवेज से इट इज स्टेबल इंडाइस निफ्टी का जो रेंज है इसी रेंज में है तो उस रेंज में स्टेबिलिटी है लेकिन दिक्कत मार्केट की है बिकॉज जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी वहां दिक्कत आ रही है वो उसमें काफी साल भर में गिरावट हुई है अभी थोड़ा कॉशन का रुख अपनाना चाहिए 2026 में स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ये आम तौर पे एक्सपर्ट्स से बोल रहे हैं और मैं भी ऐसे सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए
जी लेकिन प्रकाश जी अगर हम देखें कि भारत सरकार भी जिस तरह के रिफॉर्म्स लेके आ रही है अभी आज ही जो सेशन समाप्त हुआ है संसद का उसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए खासतौर से रोजगार गारंटी की हम लॉ की अगर बात करें तो ये जो जितने पॉलिसी मेजर सरकार ले रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार के कदम है इनका आपको बाजार पर क्या कोई असर दिखाई देता है
देखिए असर क्या है ये तो बहुत एफर्ट है सरकार के पार्ट आप देखिए दो दिन पहले इंश्योरेंस बिल पास हुआ 100% एफडीआई हम लोग अलाउ कर रहे हैं अभी तो ये बहुत बड़ा मूव है इट्स ए काइंड ऑफ ट्राइंग टू रीच आउट टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्ट हियर वी आर देन लेबर रिफॉर्म्स लेबर रिफॉर्म्स का कोड पास हुआ उसमें काफी रिफॉर्म्स रियायतें दी गई फिर उसका नतीजा भी आ रहा है कुछ रेगुलेटर्स हमारे बड़ा अच्छा काम मतलब अच्छा एक ओपन वो दे रहे हैं उसका नतीजा यूं आ रहा है पिछले एक महीने में 4-5 बड़ी डील्स हुई हैं एनबीएफसी जो फाइनेंस कंपनीज में कुछ बैंक्स में एक आज भी बहुत बड़ी डील हुई है जापानीज इन्वेस्टर यहाँ है दे आर बाइंग आउट सम शेयर्स इन आवर इंडियन कंपनीज तो एक तरह से पैसा आ रहा है ना वहां पे तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट दिखा रही हैं तो ये जो खास तौर पे जो स्टेप्स हैं वो हैं जीएसटी का कम होना इंश्योरेंस बिल एफडीआई का 100% तक ले जाना लेबर रिफॉर्म्स ये सारी और आपने जिक्र किया इससे थोड़ा सा रूरल डिमांड बढ़ती है जो एम्प्लॉयमेंट
यहाँ पर प्रकाश जी एक चीज और जैसे रुपए की हमने बात की पहले भी तो आज 90 से नीचे आया लेकिन जिस तरह से रुपया लगातार उसकी वैल्यू घटती जा रही थी निरंतर तौर पे आज एक रिलीफ हुई है आपको क्या लगता है ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है या रुपए की जो 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 मूल्य है डॉलर के मुकाबले उस पर कुछ हमारे लिए सकारात्मक संकेत आगे अगले हफ्ते अगले महीने दिखाई देंगे
उम्मीद ये की जा रही है जो 90 है ना 90 का जो बेंचमार्क है उसके आसपास कंसोलिडेट हो जाएगा
जी
अच्छा
90 का। अब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दोबारा से रुपया जो है स्ट्रांग होके, क्योंकि जो ओवरऑल फैक्टर्स हैं सबसे कुछ फैक्टर्स ही हैं, जैसे हम लोगों का FIIs का आउटफ्लो अभी अच्छी तरह से रुका नहीं है, आउटफ्लो चल रहा है ठीक है। फिर ग्लोबल मार्केट में जो पैसा है वो भी रफ शफल रीशफल
जाता रहे जी।
फिर गोल्ड इम्पोर्ट्स हमारा बहुत बढ़ रहा है, क्यों वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा गोल्ड इम्पोर्ट्स, वैल्यू में बढ़ रहा है क्योंकि रेट पर बहुत बढ़ रहा है
जी।
तो जब गोल्ड इम्पोर्ट बढ़ गया तो उसका आउटफ्लो बढ़ जाता है राइट।
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया, जापान के निकेई में 1% और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.7% से अधिक की बढ़त दिखाई दी। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.6% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 0.4% तक बढ़ा। दूसरी ओर सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में मामूली गिरावट दिखाई दी। यूरोप के प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखाई दिया। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में लगभग 0.3% और लंदन के फुटसी में मामूली बढ़त चल रही थी। दूसरी ओर फ्रांस के कैक में मामूली गिरावट दिखाई दी। प्रकाश जी आप क्या कहेंगे, अक्रॉस पूरा एशिया पूरा यूरोप ज्यादातर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल हमें शेयर बाजारों में दिखाई दे रहा है।
देखिए ये स्टॉक मार्केट जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट बड़ी अच्छे मूड में रहे हैं और खासतौर पे अमेरिकन मार्केट
जी।
और ये कई बार लोगों को अचंभा भी देता है, एक तरफ हम अमेरिकन मार्केट के संकटों की जिक्र करते हैं कि किस तरह के संकट वहां हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी टैरिफ के चलते, ग्रोथ पे इशू है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन का माहौल है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर AI का बबल का बात हो रही है, कहीं बबल तो नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट चढ़े जाता है
जी। लेकिन प्रकाश जी एक और इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि बैंक ऑफ जापान ने अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर 0.5% से बढ़ाकर 0.75% करने की घोषणा की है। जापान में सितंबर 1995 के बाद से नीतिगत ब्याज दरों का यह सबसे ऊंचा स्तर है। बैंक ऑफ जापान ने कई दशकों से अतिरिक्त सरलीकृत मौद्रिक नीति अपना रखी थी लेकिन इस वर्ष की अंतिम नीतिगत बैठक के बाद उसने ब्याज दरों को 0.25% बढ़ाने का फैसला किया। तो आपको क्या लगता है प्रकाश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 30 सालों के बाद इतना बड़ा कदम बैंक ऑफ जापान ने उठाया है, तो इसका जापान की अर्थव्यवस्था पर और विश्व की अर्थव्यवस्था पर और विश्व के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन पर किस तरह का असर आप देखते हैं?
विश्व के फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मची हुई है, इसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। ये मान्यता है सिंपल भाषा में जापान पे 0% पे उठाओ मुद्रा और इन्वेस्ट कर दो किसी भी मार्केट में, मैं 4% मिल जाएगा तो अपना मुनाफा ले लो वापिस फिर दे दो। अब क्या येन का रेट भी बढ़ रहा है तो आपको वापिस तो येन में ही करना है और फिर वहां इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इसको अनवाइंडिंग बोलते हैं, वो जो आपने किया था उनका अनवाइंडिंग है। तो काफी लोग में एक तरह की नर्वसनेस आ गई है, तो ये विश्व बाजार के लिए एक एक उनको एक सरप्राइज सा मिल रहा है। अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये आसान चीज थी ना, कितने दशकों से चल रहा था 0% पे बोरो करो और 3 पे 4 पे जहां जिस ब्याज में मिलता है कर लो, यही तो करते थे ये सब। तो अब जापान ने बोला नथिंग डूइंग, हम भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमारा येन भी अब हमारा उनका येन, आप बोरो करे येन एक्स प्राइस पे और 100 जाके कहीं इन्वेस्ट कर दिया, फिर जब वापिस करने आया तो येन का रेट उतना ही होता था लेकिन अब बढ़ गया। तो नाउ यू टू रीपे द लोन यू बाई एट एक्स येन एट एक्सपेंसिव प्राइस। तो अनवाइंडिंग में लोगों को दिक्कतें आ रही है और तो चिंता हो ही रखी
जापान को अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर लाने के लिए,
वो अपना हर इंसान के, अब कोई आदमी कहता है अमेरिका फर्स्ट तो वाई नॉट जापान फर्स्ट एंड सबसे पहले वाई नॉट इंडिया फर्स्ट, तो हर जगह अपने हर इंसान को अपना वो देखना।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने अमेरिका की बात की, लेट्स टेक अ लुक एट द US मार्केट्स नाउ। US स्टॉक्स क्लोज्ड हायर यस्टरडे विद टेक्नोलॉजी शेयर्स एडवांसिंग आफ्टर अ मेजर चिप मेकर इश्यूड एन अपबीट फोरकास्ट सिग्नलिंग स्ट्रांग डिमांड फॉर artificial intelligence. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged almost 1.4%, the S&P 500 advanced 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average added over 0.1%. On the economic front, data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics showed that headline consumer inflation rose at an annual rate of 2.7% in November. Although we're talking about U.S. economy, Prakashji, I can't resist asking you that Indian exports to the U.S. now are caught in a, they're calling it shrimp or smartphone dilemma, which means that if you export large volumes of labor-intensive products like, you know, shrimp or agriculture or textiles, that creates jobs in the small sector. But if you're shipping high technology intensive, like things like smartphones, they give us high earnings, high export earnings, and they're high value goods. So do you think that and we know that US President Donald Trump has exempted Indian smartphones and pharmaceuticals, both seen as technology intensive sectors, from all duties. How do you view that? How do we find a balance?
See, it's like this. Pharma and this electronics are in the exemption category.
Yes, yes.
So all these latest figures show that the exports to the US continue to, I mean, improved rather.
Yes.
So that came as a surprise to several people, many analysts. They thought, what is this? But then the disaggregate data is yet to come as to which products, but the it is being felt that it is a smartphone and the pharma's products which are we fall in the exempt category. They are, those products would have done the magic. All right. So, but the paradox remains, we would be rather interested, of course, more the merrier, but we would also be interested to see our textile imports improve, our leather imports improve, where the potential, or where the employment intensity is quite high. So we would be more interested there.
Right.
But more the merrier, smartphones, if they are chipped and doing well, fine for us.
Right, right. So in any case, we are now diversifying with a lot of FTAs with many other countries, and that's a good sign. I mean, we talked about ASEAN countries, Japan, South Korea, Mauritius, UAE, Australia, Oman, Sri Lanka, Bhutan. It's a long list. Well, let's talk about the India-Oman relationship right now, trade relationship. The government today informed that India will get duty-free market access to 98.08% of Oman's tariff lines under the Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, signed between the two nations. Briefing media in New Delhi today, Additional Secretary in the Ministry of Commerce and Industry, Ajay Bhadu, informed that with this agreement, sectors such as textiles, agricultural goods, leather, footwear, textile and apparel, gems and jewellery, and transport equipment are poised for strong gains. Speaking exclusively to Akashwani, Chandrima Chatterjee, Secretary General, Confederation of Indian Textile Industry, highlighted the benefits of SEPA for the Indian textile industry. Let's listen in.
The Indian textile industry looks at the India-Oman SEPA as a very positive step. India happens to be the second largest supplier of textile and apparel products to Oman after China. We supply around $140 million of textile export. It's not big for India, but it is very important market. And the best part is that the SEPA grants a duty-free access to around 98.08% of the tariff lines in Oman. And for India, it means that 99% of India's textile products will have a duty-free access in the Oman market. We look at it as a very positive step, especially at a time when we are looking at diversification. With the US tariff uncertainties continuing, it is a critical time for the Indian textile and apparel industry, and diversification of markets is very important for its resilience. So overall, we look at it as a very positive impact.
The ministry also said that SEPA creates new export opportunities in areas such as minerals, chemicals, base metals, machinery, plastic, rubber, among others. With enhanced access to Oman's import market, streamlined regulatory procedures and reduced compliance burdens. Speaking to Akashwani, Dr. Ranjit Mehta, CEO and Secretary General of the PhD Chamber of Commerce and Industry, said that India-Oman FTA would bring significant benefits to both the countries.
The SIPA between India and Oman under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji is a strong strategic step that will directly benefit Indian industry. Oman is a natural gateway to the Gulf and African market. This agreement will definitely help the Indian companies integrate deeper into a regional value chain beyond trade. SIPA will also strengthen investment flows, logistic, energy cooperation. I think it will create a long-term opportunity for Indian businesses and job at home. This partnership reflects India's growing economic confidence and its role as a trusted global partner. And I'm sure that Indian markets will definitely be upbeat on this.
प्रकाश जी, हमने ओमान की बात की. अभी प्रधानमंत्री जी तीन देशों के दौरे से वापस आए हैं. इथोपिया भी गए थे, जॉर्डन भी गए थे, और आर्थिक रूप से तीनों ही देशों में काफी महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर ये हुए. इससे आपको भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पॉजिटिव, क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है?
ये जो देश हैं ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए
जी.
और हमें मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए
जी.
क्योंकि जैसे जिक्र किया कि टैरिफ का खाली अमेरिका या बड़े बड़े बाजारों पे छोड़ के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चलना.
बट ऑल्सो अस्यूम्स दैट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल गो अप बिकॉज द एमएसएमईज विल बेनिफिट.
वेल, बिकॉज यू नो एज दे से, व्हाई पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, लेट्स पुट ऑल एग्स इन ऑल
बास्केट्स,
राइट. चलते हैं अगली खबर की ओर. संसद ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है. इस विधेयक को राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दी थी. लोकसभा ने यह विधेयक पहले ही पास कर दिया था. सरकार इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है. इस कानून के तहत हर वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी और परिवार के वयस्क सदस्य बिना किसी कौशल वाले शारीरिक कार्य स्वेच्छा से कर पाएंगे. इस योजना के लिए केंद्र 60% और राज्य सरकारें 40% राशि देंगी. हालांकि पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में ये व्यवस्था 90 और 10 की होगी.
वेल, टुडे सीम्स टू बी अ पॉजिटिव न्यूज राइट अवे फ्रॉम द रूपी एंड द सेंसेक्स and Nifty to the India's forex reserves. Well, India's foreign exchange reserves edged up by $1.6 billion to $688.9 billion for the week ending on the 12th of December. So that's again positive news on the economic front. Let's talk about crude oil. Global crude oil prices raised today. Brent crude was trading over 0.4% up at $60.09 per barrel, while WTI crude was trading almost 0.4% up at $56.35 per barrel when reports last came in. A look at the bullion market. Gold. 24-carat gold was trading almost 0.6% down at 1,33,970 rupees per 10 grams, and silver was trading over 0.6% up at 2,04,420 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध वाला सोना 0.6% से अधिक कमजोर होकर 1,33,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि मार्च अनुबंध वाली चांदी 0.3% से अधिक की बढ़त के साथ 2,04,240 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे सोने के मूल्यों में जिस तरह की हमने तेजी पिछले कुछ समय में देखी, तो आपको क्या लगता है अभी ये जारी रहेगा अब, या आपको लगता है अब ये मूल्य जो है अब स्टेबलाइज होने की तरफ बढ़ रहे हैं?
स्टेबलाइज तो होंगे, लेकिन नीचे ज्यादा स्कोप नहीं है. ये मत उम्मीद कीजिए कि गिर जाएंगे. सोना आमतौर पर गिरता भी नहीं है और वही अपनी दिशा बरकरार रखेगा, क्योंकि ये जो ये ट्रेडिंग है जो आज गिरा कल बड़ा, ट्रेडिंग जोन में चलता रहेगा, लेकिन अंडरटोन जो अंदरूनी चीज है, जो स्तर के नीचे है, वो अभी भी उसमें मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि कई इसके कारण है.
इट्स ऑलवेज सेड दैट द गोल्ड लव्स अनसर्टेनिटी.
Well, to an extent, yes, because when you are surrounded by uncertainties,
uh-huh.
then you look towards gold. So gold is what is called the last resort of sorts.
Right.
और चलते हैं अब कार्यक्रम की ओर के अंत की ओर. प्रकाश जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और हमारे श्रोताओं को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
शुक्रिया.
And friends, before we wind up, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise over 0.5%. Sensex adds nearly 450 points. Nifty settles at 25,966. Most Asian stock markets end in positive territory and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor, Amrish Saxena, and our expert, Prakash Chawla ji, to sign off. So, from all of us here, it's Namaskar.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.